अब कल्पना कीजिए एक ऐसी अदालत की जहां मुकदमा शुरू होने से पहले ही विरोधी वकील को अदालत से बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां बचाव पक्ष इतना मजबूत है कि हार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती।
ये तो एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है।
बिल्कुल, आज हम एक ऐसे ही अभेद्य बचाव, मानवीय पीड़ा और एक ऐसे प्यार पर बात कर रहे हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का स्रोत हैं डॉक्टर क्रेग कीनर के रोमियो के अध्याय 8 और 9 पर दिए गए लेक्चर नोट्स।
जी, और हमारा मकसद ये समझना है कि जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें मानसिक रूप से कैसे स्थिर रख सकते हैं।
सही का। और हाँ, शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी विशेष धार्मिक गुट का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं।
एग्जैक्टली, हमारा काम सिर्फ एक तटस्थ मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर कीनर की शोध सामग्री का विश्लेषण करना है। ये चर्चा उन जिज्ञासु लोगों के लिए है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के विषय की गहराई में जाना चाहते हैं।
तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि रोमियो का 8वां अध्याय पूरी बाइबल में पवित्र आत्मा का सबसे ज्यादा उल्लेख करने वाला अध्याय है।
हाँ, और जो बात इसे इतना खास बनाती है वो है इसका ठीक पिछला हिस्सा। अध्याय 7 में हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपनी कमजोरियों से हार चुका है।
मतलब वो बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है, राइट?
बिल्कुल। और फिर जैसे ही अध्याय 8 शुरू होता है, कहानी अचानक एक भारी जीत में बदल जाती है। ये हार से सीधे जीत की ओर एक बड़ी छलांग है।
ये बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये जीत इतनी ही बड़ी और पक्की है तो ये तुरंत पूरी तरह से क्यों नहीं मिल जाती?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
मतलब इंसान को अभी भी दर्द, बीमारी और रोजमर्रा के संघर्षों से क्यों गुजरना पड़ता है? ये सफर अभी भी इतना धुंधला क्यों लगता है?
देखिए, इसे समझने के लिए डॉक्टर कीनर हमें नए निर्गमन या न्यू एक्सोडस की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। रोमियो 8 में ये छवि बहुत गहराई से बुनी हुई है।
न्यू एक्सोडस यानी पुराने नियम वाली मिस्र से आजादी की कहानी।
हाँ, वही। जब इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया गया तो उन्हें रातों रात वादे की जमीन नहीं मिल गई थी। उन्हें एक लंबे थका देने वाले जंगल से गुजरना पड़ा था।
वो भयानक जंगल जहां उन्हें रास्ता दिखाने के लिए आग और बादल का खंबा था।
बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि ठीक उसी तरह आज विश्वासी सीधे पूर्ण छुटकारे में नहीं पहुंच जाते। वे भी एक जंगल से गुजर रहे हैं और पवित्र आत्मा उस आग के खंभे की तरह उन्हें रास्ता दिखा रहा है।
अरे वाह, ये तो तुलना तो बहुत ही सटीक है। श्रोत सामग्री ये भी बताती है कि मिस्र में गुलामी के दौरान लोगों की जो आहें थीं, उनकी तुलना यहाँ इंसानी शरीर के बंधनों से कराने से की गई है।
जी हाँ, जैसे वे मिस्र में कराहते थे वैसे ही आज इंसान बीमारी या मृत्यु के डर से कराहता है। और इसी स्थिति को समझाने के लिए शुरुआती चर्च के विचारकों ने एक सिद्धांत दिया था।
अच्छा, वो कौन सा सिद्धांत है?
जस्टिन और बार्नबास जैसे विचारकों और बाद में जॉर्ज लैड और गोर्डन फी जैसे विद्वानों ने इसे ऑलरेडी नॉट येट का सिद्धांत कहा, यानी पहले से ही लेकिन अभी नहीं।
थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी?
जरूर। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक स्तर पर आजादी मिल चुकी है लेकिन शारीरिक स्तर पर उसका पूरी तरह से लागू होना बाकी है। विश्वासी अभी केवल पवित्र आत्मा के प्रथम फल का अनुभव कर रहे हैं।
एक तरह का डाउन पेमेंट?
एग्जैक्टली, भविष्य की दुनिया की एक पूर्व झलक। पूर्ण छुटकारा अभी बाकी है।
अगर मैं इसे रोजमर्रा की भाषा में कहूँ तो ये किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर देखने जैसा है। ट्रेलर से हमें फिल्म का असली अनुभव मिल जाता है जो कि हमारा प्रथम फल है।
हाँ, ट्रेलर से उत्साह बढ़ता है।
लेकिन 2 मिनट का ट्रेलर देखने का मतलब ये नहीं कि पूरी 3 घंटे की फिल्म देख ली। पूरी फिल्म का रिलीज होना यानी पूर्ण छुटकारा अभी आना बाकी है।
ये बहुत ही बढ़िया उपमा है। और ट्रेलर से जो उम्मीद बनती है वही हमें इंतजार करने की ताकत देती है, लेकिन ये इंतजार का समय आसान नहीं होता।
बिल्कुल नहीं, इंसान थकता है।
हाँ, और उस पर आरोप भी लगते हैं। ऐसे में उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर से हमारी जरूरतों के लिए मध्यस्थता करता है, यहाँ तक कि जब हमें पता नहीं होता कि क्या मांगना है।
और मसीह भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने मध्यस्थता करते हैं। लेकिन 1 मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
पूछिए, क्या कन्फ्यूजन है?
अगर स्वयं परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर से हमारे लिए प्रार्थना कर रही है और मसीह स्वर्ग में पैरवी कर रहे हैं तो हमें अन्य लोगों या दोस्तों के प्रार्थना समर्थन की आवश्यकता ही क्यों है?
यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर होता है।
अच्छा, कैसे?
मानवीय स्तर पर जब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये उन्हें एक समुदाय के रूप में जोड़ता है। लेकिन असली सुरक्षा अलौकिक है। डॉक्टर कीनर इसे समझाने के लिए यहूदी परंपरा का संदर्भ देते हैं।
वह शैतान वाले आरोप की बात।
हाँ, पहली सदी के यहूदी साहित्य में शैतान को एक दोष लगाने वाले के रूप में देखा जाता था।
मतलब एक ऐसा वकील जो हमेशा आपके खिलाफ सबूत ढूंढता रहता है।
एग्जैक्टली। रब्बियों का तो मानना था कि शैतान साल के 364 दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर इंसानों पर आरोप लगाता है।
364 ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है?
बिल्कुल। इब्रानी भाषा में हा शैतान नाम के अक्षरों का गणितीय योग 364 होता है।
अरे बाप रे, ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही थकान देने वाला विचार है। हर दिन कोई आपके खिलाफ मामले दर्ज कर रहा है।
हाँ, और यहीं पर रोमियो 8 का महत्व सामने आता है। क्योंकि मसीह अब परमेश्वर के सिंहासन के सामने मध्यस्थ है, इसलिए स्वर्ग की अदालत में उस दोष लगाने वाले के लिए कोई जगह ही नहीं बची है।
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर स्वर्ग में हमारी पैरवी इतनी मजबूत है तो धरती पर जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है?
ये धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा सवाल है। रोमियो 8:28 कहता है कि ईश्वर सभी चीजों को भलाई के लिए काम में लाता है।
जैसे यूसुफ की कहानी में हुआ था।
जी, यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या में उसके साथ बुरा किया, लेकिन ईश्वर ने उस पूरी मानवीय बुराई को अपनी योजना में पिरोकर भलाई में बदल दिया।
लेकिन देखिए, जब हम कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, तो हम एक बहुत बड़ी बहस में कूद पड़ते हैं, कैल्विनवाद और आर्मेनियनवाद की बहस।
हाँ, पूर्व निर्धारण बनाम स्वतंत्र इच्छा, प्रीडेस्टिनेशन और फ्री विल।
मतलब क्या स्क्रिप्ट पहले से लिखी है या हम अपनी कहानी खुद चुन रहे हैं? डॉक्टर कीनर इसे कैसे संभालते हैं?
वे बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाते हैं। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि परमेश्वर हमेशा पहल करता है और इंसान को अंत तक दृढ़ रहना होता है।
तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है?
निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर इतना बुद्धिमान और संप्रभु है कि वो अपनी महायोजना के भीतर मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दे सकता है। रोमियो 9 में याकूब और एसाफ का उदाहरण दिखाता है कि चुनाव योग्यता या जातीयता पर नहीं बल्कि अनुग्रह पर आधारित है।
यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये दार्शनिक बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जरा उन पहले श्रोताओं के बारे में सोचिए जो पहली सदी के रोम में थे।
हाँ, उनके लिए हालात बहुत अलग थे।
उनके लिए इस भलाई का असली दुनिया में क्या मतलब था जहाँ उन्हें रोज मौत का सामना करना पड़ता था?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो डॉक्टर कीनर 3 क्रूर ऐतिहासिक वास्तविकताओं का जिक्र करते हैं, अकाल, नग्नता और तलवार।
चलिए पहले अकाल की बात करते हैं। क्लॉडियस के समय रोम में भारी अकाल पड़ा था, है ना?
बिल्कुल। और विडंबना देखिए, रोम को खिलाने के लिए मिस्र से भारी कर वसूल कर अनाज मंगाया जाता था। मिस्र के बच्चे कुपोषण से मर रहे थे।
ये तो बहुत ही भयानक अन्याय है।
हाँ, साम्राज्य की आधी आबादी कुपोषण के खतरे में थी। फिर आता है शब्द नग्नता। इसका मतलब सिर्फ कपड़े न होना नहीं था।
तो इसका असली मतलब क्या था?
इसका मतलब भयंकर गरीबी था। पपायरी दस्तावेजों से पता चलता है कि औसत मिस्रवासी के पास केवल एक ही लबादा या कपड़ा होता था।
सिर्फ एक कपड़ा, यानी जब वो फट जाए तो सचमुच कुछ नहीं बचता था।
एग्जैक्टली। और सबसे भयानक थी तलवार। रोम के पास मौत की सजा देने का अधिकार था, जिसे जूस ग्लेडियस कहते थे।
और इसी अधिकार के तहत सम्राट नीरो ने ईसाइयों पर वो अत्याचार किए थे।
हाँ, रोम की आग के बाद नीरो ने ईसाइयों को बलि का बकरा बनाया। उन्हें जंगली जानवरों की खालें पहनाकर कुत्तों से नुचवाया गया।
ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और इतना ही नहीं, रात में अपने बगीचों को रोशन करने के लिए उसने उन्हें जिंदा जला दिया।
बाप रे, ऐसे हालात में तो कोई भी सोचेगा कि ईश्वर उन्हें सजा दे रहा है।
लेकिन पॉल का नजरिया अलग था। वे इन त्रासदियों को ईश्वर के दंड के रूप में नहीं देखते। वो स्पष्ट करते हैं कि ये दुख विश्वासी को ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते।
पॉल तो अपनी यहूदी लोगों के लिए इतना दुख महसूस करते हैं कि वे मूसा की तरह खुद को शापित करने तक के लिए तैयार थे।
बिल्कुल। लेकिन वे जानते थे कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सत्ताएं भी, विश्वासी को मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती।
आध्यात्मिक सत्ताओं की बात करें तो यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पॉइंट है। आज के समय में लोग आध्यात्मिक युद्ध के नाम पर सीधे स्वर्गदूतों या शक्तियों को कोसने लगते हैं।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा आधुनिक भ्रम है।
स्रोत सामग्री दानियल 10 का उदाहरण देती है। दानियल ने किसी शक्ति को सीधे नहीं कोसा, उसने सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना की थी।
एग्जैक्टली। असली जीत ये जानना है कि हमारी पहचान हमारे कामों से नहीं बल्कि ईश्वर के संतान होने से है।
सच में, इस चर्चा ने मानवीय दुख पर कई पर्तों को खोला है और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं।
बिल्कुल, बताइए।
रोमियो 9 स्पष्ट करता है कि चुनाव अनुग्रह से होता है, न कि आनुवंशिकी या जातीयता से। तो जरा सोचिए, यदि सबसे गहरा आध्यात्मिक संबंध हमारी आनुवंशिकी या पृष्ठभूमि से बिल्कुल स्वतंत्र है, तो यह आज के समाज में हमारे अपने और पराये तय करने के तरीके को कैसे चुनौती देता है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है। हम इंसानों को जातियों और सीमाओं में बांटते हैं।
हाँ, क्या हमारी इंसानियत की परिभाषा हमारे खून के रिश्तों से बहुत बड़ी नहीं है? क्या यह हमें उन लोगों में भी अपना परिवार देखने की चुनौती नहीं देता जो हमसे बिल्कुल अलग हैं?
बिल्कुल देता है। ये सच में एक धुंधला और जटिल जंगल है।
लेकिन आज हमने जो समझा वो यह है कि इस जंगल में कोई अकेला नहीं है, और हमें आपस में एक दूसरे को बांटने के बजाय उस बड़े प्रेम को समझने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहरे सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।